छन्ना सागर जी महाराज की, उन्हीं श्री सर बब्बे सागर जी महाराज की, उन्हीं संघ की।
Bye. नमो श्री सिद्धानं साहूनम् पंचपनीष्टी भगवान की बोलिए 1008 भगवान की बोलिए 108 श्री आचार्य परम पूज्य विद्यासागर महाराज की बोलिए 108 श्री गुरु वैष्णवी सागर महाराज की बोलिए 108 श्री मुनिवर क्षमा सागर महाराज की जय।
बोलिए परम पूज्य मंडा श्री भक्त सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय।
ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और औरन खो शीतल करे आप ही शीतल होए। कहते ऐसी वाणी बोलिए, लेकिन कहाँ धरी वह वाणी? अब तो वाणी धरी जैसो पियो पानी ऊंची बोलो वाणी है। जूदो जूदो पानी पी रहे वाणी कहाँ से अच्छी निकले है। वही में 20 जोड़ी कप बसी जाए कई बाल्टी में सबकी जूसन डरी वही में अच्छा लगे पी रहे। अब वाणी कहाँ हेरा गई वह तो यारी। कहते माटी कहे कुमार सो तू क्यों रूंधे मोए और एक दिन ऐसा होएगा कि मैं रूंधूंगी तोए। माटी माटी को ही कुमार रूंधता है, लेकिन एक दिन ऐसा मौका आ जाता है कि उसी माटी का घड़ा बनाकर सिर पर रखता है, है? तो भैया पानी को ख्याल करो तो पानी पियो अच्छो। और अगर अपने चार्ज को ख्याल करो तो भोजन अच्छो करो तो सब काम बन जाए। अब रोज की चर्चा तो होते ही है और चर्चा तो लगी है दोनों हम रहे हैं तुम्हारे थे। जम्बूद्वीप के पूर्व देव क्षेत्र में सीता नदी के लिखा जज्जो ख्याल कर जो काका कह रहे हैं। जम्बू द्वीप के पूर्व विजय क्षेत्र के सीता नदी के तट दक्षिण तट पर मंगलावती देश है। वहां रत्न संचयपुर नामक नगर है। वहां राजा बद्रसेन रानी जयावती राज करते थे। उनके युवा अवस्था निकलने को हो गई, वृद्धा अवस्था आने को हो गई और कोई संतान नहीं हुई। अब तो रानी के लिए और राजा के लिए बहुत दुख है, पर राजा तो पुरुष है, साहस करता है कि किस्मत है, भाग्य है और हो भी जाए पुत्र तो कहते पूछ सपूत है तो का धन संचय। अगर पूत कपूत है तो कितने धन लोग रख दे कमा के तो कोई काम को नहीं है उसके लाने। और पूत अगर सपूत हो ने भी धन संचय करो तो भी वो नाम उठा दे। इसलिए कहते राजा सोचते हैं परमेश रानी को समझाते हैं कि क्यों विकल्प करती हो। मगर रानी अबला है, महिला के लिए सहन नहीं होती। कोई जाई कह जाई, अरे तुम तो बांझ हो, फिर तो बहुत ही खराब बात हो गई है। रानी बहुत दुखी है, जयावती क्या करते भाग्य के लिए। एक दिन जिन मंदिर में भगवान धीरेन्द्र देव की पूजन भक्ति करने के उपरांत और वहां पर ज्ञान सागर महाराज के दर्शन हो जाते हैं। ज्ञान सागर महाराज के दर्शन के बाद में मुनिराज का उपदेश सुनते हैं और धर्म उपदेश के उपरांत में फिर राजा पूछते हैं कि हे महाराज, हमारी इस रानी के संतान होगी कि नहीं। मुनिराज अपना अवध ज्ञान जोड़कर विचार करते हैं और मुनिराज कहते हैं, हां इनके सिर्फ एक ही संतान होना है और इनके पूर्व भाव का जो कर्म था, जो दूसरों की संतान के लिए तिरस्कार करती थी, कैसे करती थी, अपने संतान के लिए अच्छा अच्छा माल खिलाती थी और दूसरे के लिए उसको बासे कूसे टुकड़ा दे देती थी, चलो जाओ खाओ पियो मगो। इस तिरस्कार से इनके यहां इतना अंतराय का उदय आया है और इसके बाद में इनने उसी भाव में फिर मुनिराज के कहे से दूसरों की संतान के लिए गले लगाया और हर व्यक्ति के लिए भी उसकी प्रभावना करके समझा, खिलाया पिलाया, खूब दान दिया और इस प्रकार से पुण्य का बंध हो गया। सुजी इस भाव में आनके तुम्हारी रानी हुई है। अब इनके यहां जो जन्म लेने वाले हैं वे कौन हैं, हे राजन सुनो। कहती जे इनके यहां जन्म लेने के लिए पांचवें स्वर्ग से और देव अपनी आयु पूर्ण करके आएंगे और चक्रवर्ती पद के धारी होंगे। अब तो जितना दुख था उतना रानी के लिए सुख हो गया। पुत्र तो अभी नहीं हुआ लेकिन शांति हो गई। कुछ समय निकल जाता है और इसके बाद में पुत्र का जन्म होता है। पुत्र का नाम रत्न शेखर रखा गया। रत्न शेखर बालापन को जीत करके वह अवस्था में आता है और एक दिन घूमने के लिए अपने साथियों के साथ वन में जाता है। घूमता क्या होता है, एक मेघवाहन नाव का विद्याधर अपने विमान से निकलता है। वो पूर्व जन्म का मित्र था इसका। इन चक्रवर्ती रत्न शेखर ने उसके साथ उपकार किया था, वो उपकार आगे बताएंगे। तो उसके लिए जाति स्मरण होता है, उसने विमान उतार दिया नहीं थे और विमान उतार करके और इनसे मिलता है और कहता है, प्रेम से कहता है कि हे मित्र, तुमने हमो पहचाना। जी कहते भाई हमने तो नहीं पहचाना। कहता भाई ठीक है, मैं आप रत्नशेखर कुमार हुए हैं और मैं निर्वहन हुआ हूँ। विद्याधर पूर्व में हम तुम दोनों पिता पुत्र थे। अब पुण्य के उदय से तुम चक्रवर्ती हुए हो जाओगे चक्रवर्ती, ऐसा उसके लिए भास हो गया। और मैं दूसरे स्वर्ग में सिद्धि का धारी देव वो वहां चक में विद्याधर हुआ हूं। क्या होता है रत्नशेखर को? रत्नशेखर कहते हैं, भाई जिस प्रकार तुम नेहरू की वंदना करते हो उस प्रकार वंदना हमको भी तो करना है। अब भाई उन्होंने कहा, तुम तो भूम गोचरी हो, वो तुम हमारे विमान में बैठ जाओ। तो रत्नशेखर कहते, भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, तुम हमारे लिए विद्याएं दो, हम विद्या सिद्ध कराओ। तब उस मित्र ने कई दिन वन में रहकर इनके साथ में, देखो पुण्य का कितना बड़ा खेल होता है, कौ के संग उपकार कर दे उसका कितना बड़ा महत्व होता है, हैं? और वो विद्या सिखाने के लिए कई दिनों में इनने विद्याएं प्राप्त की तो 500 विद्याएं सिद्ध हो गई। 500 विद्या सिद्ध हो जाती हैं तो ये खुद अपनी विद्या के बल से विमान बनाती हैं। और उस विद्याधर की मेघवाहन के साथ में रत्नशेखर और वंदना के लिए जाती है। करते करते जे सुमेरगिर की वंदना और जे जाकर के कहां पहुंचते हैं, विजयार्जगिरी के और जे जाकर के अकृतन चैत्यालय में जाकर वंदना को पहुंचती है। वहां की वंदना करके जे बैठे ही थे चैत्यालय में, पूजा कर करके बैठ ही रहे थे कि दक्षिण श्रेणी के रत्नीपुर के राजा की श्री सेन राजा की कन्या मदन मजूसा उसी जनालय में वंदना के लिए आती है। और इनको देख करके वो मोहित हो जाती है। पर कन्या ने सोचा कि मैं बिना पिता के बिना माता के आज्ञा के अपना मन का व्रत तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं करूंगी तो इन्हीं के साथ में अपना विवाह करूंगी। वह जाकर के और अपनी भाई से सारे अपने मन के भाव बता देती है। पिता निमस मात्र में अपने विमानों से आकर के रत्नशेखर के लिए और अपनी नगरी ले जाती है। अब बताओ भूम गुजरों का तो पैदा भाई और अब कहां कहां घूम रहे, कहां विदेश क्षेत्र, कहां विजयाद है, और उतर की दक्षिण श्रेणी की सीता नदी के पास के नगरों के राजा लुवा जा रहे इनको है। वहां पर विधि पूर्वक ब्याह करते हैं वे और विवाह करके इनके लिए अटूट द्रव्य देते हैं। वहां से जे अपना चक्रवर्ती दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ती है। जे दिग्विजय करते हैं और जे रत्नशेखर चक्रवर्ती 16,000 वर्ष, अब बताओ 16,000 बस है, अपन 100 साल के ना नो रहे 16,000 बस में घर ही नहीं है, उनके बामता ही उगता नहीं कि भज्जा कहां गए है? और देख बजे करके 16,000 बस में लौटी। जिनने 32,000 मृक्षों की कन्याएं और 32,000 विद्यालयों की कन्याओं से विवाह किया है और 32,000 भूमि गोचरों की कन्या से विवाह किया, 96,000 रानियां जिनके साथ में, ऐसे रत्नशेखर चक्रवर्ती अब अपने नगर में आते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि पुण्य का कितना बड़ा भारी फल होता है। अगर क्या होता है कि ये छह खंड पृथ्वी के अधिपति चक्रवर्ती हो जाते हैं और इनका चक्रवर्ती पद का अभिषेक होता है और सब देव विद्याधर मिलकर इनका अभिषेक करते हैं और चक्रवर्ती पद को धारण जी कर लेते हैं। इसके बाद में इनके जो अंगों के भाव हैं वे कलबते हैं। बोलिए महावीर स्वामी, हम आप कहां तो पहुंच गए होते हैं।
सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल ही सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
की जय। जय बोलेगा परम पूज्य मुन्ना श्री क्षमा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुन्ना श्री भव्य सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय।
हम पिछले दिनों से लगातार अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए विचार कर रहे हैं। यहां हम इस जीवन को जीते हुए कोई ना कोई कर्म करते हैं। जो कर्म हम करते हैं वैसे ही संस्कार हमारे भीतर पड़ जाते हैं और उन संस्कारों के वशीभूत होकर के भी हमें कुछ कर्म करना पड़ते हैं। हैबिट इज द सेकंड नेचर। हमारा स्वभाव नहीं होते हुए भी हमारे संस्कार हमें वैसा करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और कुछ कर्म ऐसे हैं जो कि हम निरंतर अपने साथ जोड़ते चले जा रहे हैं। क्या कुछ उपाय है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उनमें कोई परिवर्तन संभव है? जो कर्म हम भोग रहे हैं उनको भोगते समय कोई हमारा पुरुषार्थ काम आ सकता है? और जो कर्म हम निरंतर बांध रहे हैं क्या उनमें हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं? हम इन तीन बातों पर विशेष रूप से विचार कर रहे हैं। बंधने वाले कर्म, किए जाने वाले कर्म और भोगे जाने वाले कर्म, इन तीनों में से हमारा अपना पुरुषार्थ कहां तक काम आ सकता है? तो हमने पिछले दिनों यह समझा है कि बंधने वाले कर्मों में भी हम अपने अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। जब कर्म का उदय आए तो हम उनको भी अगर ठीक ढंग से भोगें तो भोग सकते हैं। और जो कर्म हम कर रहे हैं उनको तो हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। कल जो कर्म उदय में आने वाले थे उनको हम आज ला सकते हैं, जो हम आज उदय में आने वाले हैं उनको कल पर हम स्थगित कर सकते हैं। यानी इस तरह हम देखते हैं तो कर्मों पर हमारा पूरा जोर है। वास्तव में कर्म हमारे विधाता नहीं है, हम कर्मों के विधाता हैं। ये बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए।
कर्म का बंधन तभी तक है जब तक कि हमने कर्म के जिम्मे सारी चीजें छोड़ दी हैं। कुछ लोगों ने इस देश में ईश्वर के जिम्मे सारी चीजें छोड़ रखी हैं। वे श्रद्धालु लोग हैं कि जो कुछ करता है ईश्वर करता है, जिस विधि राखे राम ताबीदि रहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हमारे कर्मों में जैसो बदो हुई है सो ऊंसो हुई है। अपने पुरुषार्थ को क्यों नहीं हम जागृत करते हैं? ईश्वर की कृपा भी हम पर तब होती है जब हम पुरुषार्थ करते हैं, और कर्म भी हमारे अनुकूल तब होते हैं जबकि हम पुरुषार्थ करते हैं। वरना तो सबके सितारे गर्दिश में ही हैं। किसके हैं? जो बुलंदी पर हो। बुलंदी पर उसके होते हैं जो पुरुषार्थ करते हैं। मुझे आपसे इस कर्म सिद्धांत की चर्चा के दौरान यही बात बार बार और बहुत जोर से कहनी है। क्या हम लोग कर्म से प्रेरित होकर उसके हाथ की कठपुतली बनकर के यहां जीने के लिए मजबूर हैं क्या? जो हमने कर्म कर लिए हैं उनका फल हमें वैसा ही भोगना पड़ेगा, इस तरह की कोई मजबूरी है क्या? या जो हम अपना जीवन जी रहे हैं वो भी हम कर्मों से प्रेरित होकर जी रहे हैं, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने ऐसे बहुत से भ्रम पाल लिए हैं, हमें उनको समझना पड़ेगा, हमें उन पर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि आखिर हम अपने जीवन में जो करते हैं, जो भोगते हैं और जो निरंतर हमारे साथ बंध रहा है, उसमें हमारा कोई वश है या नहीं है, या कि हम परवश हैं। कर्म का उदय आएगा और हम उसके उदय में कोई ना कोई भाव करेंगे और उन भावों के द्वारा फिर नए कर्म बनेंगे, फिर उनका उदय आएगा और फिर हम कोई भाव करेंगे, फिर नए कर्म बनेंगे, और एक वीसा सर्कल चलता रहेगा। हम कभी इससे मुक्त नहीं हो सकते। तब फिर बंद कर देना चाहिए, अब कल से अपन नहीं बैठेंगे। काहे को बैठेंगे जब कुछ सब कुछ कर्म के आश्रित है और सब उसी के चलाए चल रहा है, तो हम काहे को विकार में परेशान हो? लेकिन ऐसा है नहीं, हमारे हाथ में है। जैसे कि घर हमारे हाथ में है, लेकिन कब तक? जब तक कि हम जागे हुए हैं, और जिस दिन हम सो जाएं उस दिन तो घर चोरों का हो जाता है, फिर हमारा नहीं रह जाता है। बस इतनी सी चीज है। सो हम अभी तक जागे नहीं हैं और हमेशा से सोते ही आ रहे हैं, और अब तो हम ये भी भूल गए हैं कि हमारा है कुछ, सब उन्हीं का है, कर्मों का ही है सब, हमारा कुछ नहीं। नहीं, लेकिन आज हमें अब जागृत होने की आवश्यकता है। हमने मोह की नींद में खूब सो लिया है और खूब कर्म बांध लिए हैं, कर्मों का फल भी भोग लिया है, और उन कर्मों के फल भोगते समय खूब संक्लेश करके और नए कर्म बांध लिए हैं उस मोह के चलते। अब मुझे मालूम पड़ गया है कि ये मोह मेरी कमजोरी है, और इस मोह के चलते मैंने ये भी मन में बना लिया था कि मेरा कोई वश नहीं चलेगा इन कर्मों पे। ये कर्म जैसा मुझे करवाएंगे, देखो तो जब नरक आयु का उदय आ जाता है तो नरक जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? कौन है जो कि नरक जाना चाहता है, पर उदय आ गया है तो अब जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, आप ही बताओ। अच्छा, तो ऐसे हमने कुछ बातों को विचार करके और मान लिया है कि नहीं, वो तो हम अपने कर्मों के चलाए संसार में चल रहे हैं, हम अपने अनुसार नहीं चल रहे, ना हमारा कोई उस पे जोर है। ये हमारी कर्मबंध के बारे में अज्ञानता और हमारी पुरुषार्थहीनता तो है ही, उसी की वजह से तो मोह, और उसी की वजह से जो है हमारे कर्मबंध की प्रक्रिया का अज्ञान ये प्रबल हो गए हैं। अगर हमारा पुरुषार्थ जागृत हो जाए तो हम मोह को भी तोड़ सकते हैं, और हम अपने कर्मबंध की प्रक्रिया के अज्ञान को भी तोड़ सकते हैं, और जैसा अपना जीवन चाहें वैसा हम बना सकते हैं। जैसा हमने बना लिया है उसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है, ये ध्यान रखना। जैसा हम जी रहे हैं उसके लिए कोई और हमारे अलावा जिम्मेदार नहीं है। इनने या उनने ऐसा या वैसा कर दिया इसलिए हम ऐसे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हमने और किसी कारणवश ऐसा किया था सो हम ऐसे हैं, और हम ऐसे और करेंगे सो और ऐसे होंगे, ये हमें तय कर लेना पड़ेगा अपने मन में। कोई जिम्मेदार नहीं है। अपनी जिम्मेदारी ना हम कर्मों पे सौंप सकते हैं, ना अपनी जिम्मेदारी हम भगवान के जिम्मे सौंप सकते हैं, ना अपने परिवारजनों के, ना संसार के प्रति। ये है कर्म फिलॉसफी का क्लू। सारी द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद मी, अंततः जिम्मेदार मैं हूं, ये फील होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने मुझे गाली दी थी इसलिए मुझे गुस्सा आया, लेकिन वो गाली जब जब दें तब तब मुझे गुस्सा तो नहीं आता है, जब होली का दिन होता है और उस दिन ये मुझे कड़ी बातें कहते हैं तब तो गुस्सा नहीं आता। मैं तो ये मान के टाल देता हूं कि आज तो होली का दिन है, नाराज होने की कोई बात ही नहीं है, तो फिर मैं रोज क्यों नहीं मान लेता हूं कि आज भी होली का दिन है और इन्हें कह लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज मैं नाराज हो जाता हूं तो आज मेरी नाराजी मेरी अपनी है, उसके अपशब्द तो उसने कल भी कहे थे आज भी कहे थे, क्या करें, गरीब आदमी है, उसके पास दो मीठे शब्द ही नहीं है, सो जोन है सो वही तो दे रहा हो, अपन तो शांत रहें कम से कम। ऐसा विचार नहीं आ पाता है, ये हमारी अपनी कमजोरी है, इसको हमें समझना चाहिए। हम कर्म बंध की प्रक्रिया को समझ चुके हैं, हम कर्मों में कितना परिवर्तन कर सकते हैं ये भी हम समझ चुके हैं। आज हमें यह समझ लेना है कि हम इन कर्मों के बंधन से बचने का कोई उपाय कर सकते हैं क्या, और इनका फल भोगते समय हमें क्या बिहेवियर करना चाहिए, क्या अपना व्यवहार करना चाहिए। बस ये दो चीजें आप समझ लें, अपन फिर एक दिन अपन बैठेंगे और ये जो अच्छे और बुरे कर्म हैं इनके बारे में समझ लेंगे कि भले कर्म क्या है और पाप कर्म क्या है और पुण्य कर्म क्या है, इन पे भी अपन समझेंगे, क्योंकि कई चीजें हैं जिनको कि हम पुण्य मानते हैं और कई चीजें हैं जिनको हम पाप मानते हैं ऐसा, और कई चीजों को हम पुण्य का फल मानते हैं भले ही वे हमें पाप में कारण बनती, पर थोड़ी सी चर्चा इस बात की कर लें। एक बात तो पक्की हो गई कि जो कर्म हमने बांधे हैं वे हम ही ने बांधे हैं और कोई ने हमारे लाने नहीं बांधे, और जो हम भोग रहे हैं सो भी हम ही ने बांधे इसे हम भोग रहे हैं, कोई के बांधे हम नहीं भोग रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं सो वे भी हम इनको भोगने पर हैं, वे भी हम ही बांध रहे हैं। इतनी तो आगे मोटी मोटी समझने की नहीं आई, और हम ज्यादा नहीं बहुत थोड़ा लगने लगता है कि कठिन तो नहीं हो रहा तो मैं फौरन जो है रुक जाता हूं। इतनी मोटी बात तो सबके समझ में आ गई होगी, और अब मुझे करना क्या है, कर्म बंध की प्रक्रिया मेरे मोह से मेरी अज्ञानता से मेरी पुरुषार्थहीनता से होती है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे मोह को कम करना चाहिए। मेरा मोह कम होता है अनंत भगवान की भक्ति से, मेरा मोह कम होता है प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव रखने से, तो क्यों नहीं मैं अपने प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव को जागृत करता हूं, क्यों नहीं मैं अनंत भगवान की भक्ति में अपना मन लगाता हूं, क्योंकि ये मेरे मोह को कम करने वाले हैं, और कर्म बंध की अज्ञानता को दूर करने के लिए क्यों नहीं मैं इस कर्म के बंधन के समय और मुझे जो जो मुश्किलें होती हैं इसके उदय में उनसे क्यों नहीं ज्ञान हासिल कर लेता हूं, दूसरे को कर्म का फल भोगते देख करके क्यों नहीं मैं ये ज्ञान प्राप्त कर लेता हूं कि अरे भाई और कौन सा कर्म बंध के प्रक्रिया के बारे में ज्ञान हासिल करना है, देखो ऐसे ऐसे कर्म बांधने से ऐसा उसका फल मिला, ऐसे गाफिल होने से ऐसा फल मिला, यही तो कर्म बंध की जानकारी है और क्या। मैं जैसा करूंगा वैसा मुझे भोगना पड़ेगा, सिर्फ इतना ही सा नहीं है, नहीं भोगते समय में जैसे विचार रखूंगा वैसा मुझे फल मिलने वाला। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का निमित्त पाकर के और भाव का निमित्त पाकर के ही कर्म उदय देते हैं, उभय निमित्त वसात फल प्राप्ति उदय, पूज्यपाद स्वामी की निश्चित परिभाषा है कि जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव इत्यादि भाव का निमित्त पाकर के कारण वसात फल प्राप्ति जब कर्म अपना फल देते हैं उसे ही हम उदय कहते हैं। हमारे कोई ना कोई कर्म का उदय निरंतर है, अभी भी हम सबके अधिकांश लोगों के लोभ कषाय का उदय चल रहा है। इस लोभ कषाय के उदय में चार बातें, धर्म की सुनने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं और इसी लोभ कषाय के उदय में और कई लोग अपनी अपनी दुकान पे ग्राहक से बात कर रहे हैं इसी लोभ कषाय के उदय, जिस लोभ कषाय के उदय में हम यहाँ बैठे धर्म की चार बातों पर विचार कर रहे हैं, वे अपने ग्राहक से अपने माल बेचने की बात पे विचार कर रहे हैं उसी लोभ के उदय में। तो भैया अब ये समझ लेना है कि उदय में मेरे अपने परिणाम भी जिम्मेदार हैं, मेरा अपना द्रव्य क्षेत्र काल भी जिम्मेदार है, मेरा भाव भी जिम्मेदार है, एक एक बात पे विचार कर ले। एकमात्र साता कर्म है मान लो, या साता कर्म है मोटा हिसाब है, साता साता सब समझते हैं, जिस कर्म के उदय में सुख का अनुभव हो वो साता और जिस कर्म के उदय में दुख की अनुभूति हो वे सो वो असाता है, ये दो कर्म ले लो मोटे मोटे। अब जैसा द्रव्य होगा वैसा साता असाता अपना फल देगा, अगर मेरा शरीर बहुत कमजोर है और असाता का उदय आएगा तो असाता मुझे ज्यादा फल दे करके जाएगा,
मुझे ज्यादा तकलीफ महसूस होगी, क्योंकि मेरा द्रव्य जो है वो कमजोर है, और किसी का द्रव्य अगर बलिष्ठ है और असाता का उदय आए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी चीजों से इनको शरीर पर कोई ज्यादा असर नहीं होता। और इतने में ये भी ध्यान रखना, अगर साता का उदय आएगा और बहुत अधिक बलवान व्यक्ति है तो वो उसमें अम्यूज भी बहुत अधिक करेगा। अभी मैं कर्म बंध की प्रक्रिया के बारे में नहीं कह रहा हूं, जो जैसे भाव करेगा वैसा आगे के लिए कर्म बांधेगा, ये बिल्कुल अलग चीज है। अभी अपन सिर्फ ये समझ रहे हैं कि द्रव्य के निमित्त से कर्म अपना फल कैसे देता है। कमजोर शरीर वाले को असाता ज्यादा आंसेगी, और साता भी होगी तो उस कमजोर शरीर वाले को उतना सुख ज्यादा नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका द्रव्य ही वैसा है। बताओ चीटी को साता को दयावे सुखा हुई है, ज्यादा से ज्यादा शक्कर की दलिया मिल जाए और का और कुछ और कुछ मिल रहा है क्या? उसके साता का उसका द्रव्य ही उतना है, उसके द्रव्य के अनुरूप उसको साता का उदय आया तो उतना ही है क्या भैया? ठीक है, जिसका जैसा द्रव्य है वैसा उसके कर्म का उदय आकर के अपना फल देगा, उसकी क्षमता के अनुसार देगा, और जैसे क्षेत्र में बैठे होंगे वैसा वो कर्म अपना फल देगा। मंदिर में बैठे हैं क्रोध का उदय आवे तो आ करके और किसी दूसरी प्रकृति में परिवर्तित होकर अपना फल देके चला जाएगा, अपने अनुरूप फल नहीं देगा वो हमारे लिए। क्रोध मंदिर में बैठ के नहीं आएगा, वो मान कषाय में कन्वर्ट हो जाएगा, कह रहे चार जने हैं काके हैं अपने लाने से, अपने मान की रक्षा के लिए हम चुप रह जाएंगे, वहां पर गुस्सा नहीं करेंगे। वो क्रोध क्षेत्र का निमित्त पा करके बिना फल दिए दूसरे के मुख से फल दे करके चला गया, ऐसा कर्म का उदय है। मैं तो छोटी छोटी चीज आपको समझा रहा हूं, उदय और भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं उदय के बारे में, कैसे किस कर्म के उदय कहां कहां किस गुण स्थान में आते, वो चर्चा नहीं कर रहा हूं, बहुत मोटी चर्चा कर रहा हूं, बारीक चर्चा नहीं कर रहा। तो क्षेत्र अभी हम यहां बैठे हुए हैं, ये क्षेत्र गुस्सा करने का नहीं है, ये क्षेत्र लोभ करने का है यहां तो, और वो वाला लोभ भी नहीं कि अपन बाजू वाले से आप चर्चा करो कि आज का भाव भी की बात चीज और तो हमारी तय कर लो कि हमारी उत्ती लेने जा, नहीं कर रहे अपन चर्चा उस लोभ के उदय में। अपन लोभ के उदय में यही चर्चा कर रहे हैं कि देखो तो अपन ने अपने जीवन को अभी तक अच्छा क्यों नहीं बनाया, अपन अच्छा बना सकते, यही चर्चा करेंगे और क्या करेंगे। तो क्षेत्र नहीं है, हम क्षेत्र बदल करके कर्मों के उदय को परिवर्तित कर सकते, मैं कह ये रहा हूं। और काल सुबह सुबह से अगर कोई भिखारी भीख मांगने आ जाए तो अपन ज्यादा कुछ नहीं कहते, लो जाओ, और वो अगर चार बजे आए तो चार बातें सुनाएंगे कि इतने हट्टे कट्टे हो, शर्म नहीं आती, कुछ काम किया करे, अब नहीं देंगे अपन। सुबह परिणाम अलग थे, दोपहर में परिणाम अलग है, काल के अनुसार कर्म एक ही उदय में हो सकता है लेकिन हमारे अपने परिणामों पर उसका असर अलग अलग पड़ सकता है। सुबेरे रोग हमें कम आंसता है, जैसे जैसे दिन चढ़ता है शाम होती है, किसी भी रोगी को देख लो वो कहता कि अब तो हमें झेला नहीं जाता, दिन भर से बहुत तकलीफ है, और रात को तो और अधिक जो है वो तकलीफ बढ़ जाती, तकलीफ नहीं बढ़ जाती है, उस काल का भी असर पड़ता है। साता का उदय है या असाता का उदय है तो किस समय में कैसा वो फल देगा ये भी ध्यान रखना। यहां पर किसी के भी अगर श्वेत नाम कर्म का उदय है तो हो सकता है, और विदेश में हो गए तो और अच्छा श्वेत नाम कर्म का उदय हो सकता है, लेकिन दक्षिण भारत में चले जाओ तो श्वेत नाम कर्म का उदय वहां के क्षेत्र को पा करके और कृष्ण नाम कर्म में परिवर्तित हो जाएगा, वहां की स्किन काली रहेगी, फेयर नहीं रहेगा कलर, क्यों? क्षेत्र बदल गया। इस तरह तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमारे कर्म द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव इनके आश्रित उदय में आते हैं, घबराने की बात नहीं है, हमने बांध लिए हैं सो भी इन पर बहुत कंट्रोल है। ये तो सब चीजें मान लो, द्रव्य भी खोटा मिल गया, क्षेत्र भी खोटा है, काल भी खोटा है, मान लो पंचम काल में पैदा हुए हैं, चलो कोई बात नहीं, सड़ो शरीर मिलो है, और क्षेत्र भी अच्छो नहीं है, ये भी मान लिया हमने, और भाव तो मनुष्य भाव है, लेकिन इसके बाद भी अगर हम अपने परिणाम संभालना चाहें तो हम अपने परिणाम संभाल के सारे कर्मों के उदय की स्थिति को बदल सकते हैं। अंत में, इसलिए भाव रखा हुआ है। भाव पर तो हमारा वश नहीं है कि मनुष्य हो गए हैं तो मनुष्य की तरह जीना पड़ेगा, नारकी है तो नारकी की तरह जीना पड़ेगा, नारकी की असाता अलग है और हमारे असाता का उदय आए तो हमें दूसरे ढंग से दुख मिलेगा, नारकी को दूसरे ढंग से मिलेगा, उसी असाता के उदय में तिरंज को अलग मिलेगा और असाता के उदय में देवों को अलग प्रकार का दुख मिलेगा, सबको अलग अलग प्रकार का भाव जिसका जैसा है। लेकिन इसके बाद जो मुख्य बात है कि मेरे परिणाम जैसे होंगे वैसा कर्म मुझे अपना फल देगा। कर्म के उदय में तो मेरे परिणाम उससे प्रभावित होते ही हैं, लेकिन मैं चाहूं तो उस कर्म के उदय से अब प्रभावित भी रह सकता हूं और रहता भी हूं। कई मौके पर हम कर्म का बहुत तीव्र उदय होने पर भी उससे अब प्रभावित बने रहते, क्यों? उपयोग हमने बदल लिया। मैं इसके लिए तो उदाहरण कई दे चुका हूं, पहले भी अपन इस चीज को समझ चुके हैं। बच्चे लोग प्ले ग्राउंड में खेला करते हैं और खेलते खेलते और पैर में चोट लग गई, और पैर में चोट लग गई लेकिन खेल में इतने मशगूल हैं कि ध्यान ही नहीं गया उस तरफ, और जब सारा खेल खत्म हुआ तब उसके बाद देखा कि अरे इतना खून निकल गया, तो हो सकता है कि ऐसा विचार करके कि इतना खून निकल गया और बेहोश हो जाए। अब क्या हुआ, असाता का उदय तो उसके चोट लगते ही शुरू हो गया था, असाता अपना उदय दे रही थी और हमें दुख हो रहा था, लेकिन हमारा उपयोग उस तरफ नहीं होने से हमारे परिणामों पर उसका कोई असर नहीं हुआ, और जैसे ही हमारा उपयोग उस तरफ गया वैसे ही हमारे परिणाम कलुषित होना शुरू हो गए। अरे मुझे तो जो है इतनी पीड़ा है, इतनी चोट लग गई, अब मेरा भविष्य में क्या होगा, हो सकता है कि पैर कटना पड़े, ऐसी चिंताएं बहुत सारी घेर ली हमने। अनावश्यक रूप से हम कर्म के उदय में व्यथित हो जाते हैं या कि अहंकार कर बैठते हैं, दो ही चीजें हैं। हम अगर बहुत गौर से देखें तो कर्म का उदय जितना आता है उससे अधिक हम अपने परिणाम और बिगाड़ लेते हैं, इस वजह से वो कर्म का उदय अच्छा। और क्या करें, अब उसको यही कहना पड़ेगा कि हमें वैसा माहौल भी नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति दुखी हो तो उसके दुखों बढ़ाने वाला माहौल तो मिलेगा, उसको दुखों कम करने वाला माहौल नहीं मिलेगा, एक ये भी है। लेकिन अपन माहौल के पीछे ही कहां से पड़े रहो, अपने को तो ये सारी प्रक्रिया अपने जिम्मे लेनी है, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि भैया थोड़ी हमें साता को बाहर ही से कछु मिल जाते हो तो हम अपने अंदर थोड़ा संभाल लेते, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में कैसे हम, और कर्म का उदय भी है कैसे हम संभालें, परिणाम कैसे संभालें, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल इन पर हमारा अगर वश नहीं हो तो हमारे अपने भावों पे तो हमारा वश है और उस पे ही सारा कुछ निर्भर है। कर्म के उदय में मैं अपने परिणाम जैसे रखूंगा वैसे ही नए कर्म आगे के लिए बंधेंगे और वर्तमान भी वैसे ही मुझे भोगने में आएंगे, ये चीज भर समझने की है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि शायद समझ में आए, और कर्मों को जीतने के उपाय तो छोटे छोटे से दो तीन हैं, उस पर भी अपन विचार कर लेंगे। क्या हुआ, एक पिताजी अपने बेटे से बहुत परेशान था, हमने शायद ये सुना दिया हमें ऐसा लगता है, नहीं यार ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि कई बार की सुना चुका हूं, अगर सुना भी दिया होगा तब भी अब आ तो गया ही है, अब क्या आपको याद आ जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सुना दिया। क्या हुआ कि वो पिताजी बहुत दुखी रहते थे अपने बेटे से कि हमारी कोई भी बात नहीं मानता, हम जैसा कहते हैं उससे उल्टा ही चलता है। तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि थोड़ा हमारे लड़के को समझाना, तो आपकी तो बहुत मात मानता है और अब हमारा कितों से जीवन रहेगा, वो है हमारी थोड़ी बात मान लेवे तो तनक शांति से जीवन निकल जाएगा, ऐसा सबके जीवन में आता है। तो जो उनके मित्र थे पिता के, उनने उस लड़के को एक दिन बैठा था तो उससे कहा कि काय भैया तुम अपने पिताजी की काय नहीं मानते, और अब इतनी उनकी उम्र हो गई है थोड़ा तो उनके मन का कर दिया करे। अरे चल हम तो परेशान है उनके मन का ही करते करते परेशान है। कैसा? तो कहते अब क्या हुआ, एक बार आपको क्या बताएं अंकल, हमारे पिताजी का कोई, हम उनकी कौन सी बात नहीं मानते, हमें ये आज तक समझ भी नहीं आई, हम सब बातें उनकी कही मानते लेकिन उनको तो हमेशा मुझसे शिकायत ही रहती। कह रहे बताओ तो क्या हुआ, कह रहे नए कपड़ा बने, अब नए कपड़ा बने अच्छे बने थे, हमने सोची कि अब दुकान जा रहे हैं तो अच्छे नए कपड़ा पहन के जाए, हम नए कपड़ा पहन के दुकान गए। अब बस जैसे पिताजी ने देखा हो, कह रहे कि हो हम कमा कमा के भरत जा रहे थे, तुम जो है और साहब ज्यादा बने घूमो, हमें भी लगा कि हाँ ठीक बात है, अब हमें नए पहनने चाहिए थे, नए बने ऐसे रखे रहने देते अपन, तो हमने जो है और फिर नहीं पहने, और दो चार दिन बाद हम फिर दुकान गए तो हम भी पुराने कपड़ा पहने थे, तो कर लो जैसे पिताजी ने देखा कर लो लजवाओ ने अबे तो हम कमा उठे अच्छी तो कर लो कम से कम आप बताओ कर लो हम पिताजी के अनुसार क्या करें अगर हम ठीक पहनते तो तकलीफ है और हम अगर ठीक नहीं पहनते तो तकलीफ तो भैया यहां पर जिस व्यक्ति को अगर संसार अपना बढ़ाने ही है सो वो तो चाहे जैसी स्थिति आ जाए अपने परिणाम बिगाड़ने ही है जिसको तो बिगाड़ देता है द्रव क्षेत्र काल क्या करेगा हमारे अपने परिणाम अगर हम संभालना चाहें तो संभाल सकते नहीं तो हर जगह और हम इसी तरह अपने नेगेटिव अप्रोच कहलाती है ये हर समय हम इसी तरह का विचार करके और अपने परिणामों को बिगाड़ करके नए नए कर्म बांधते हैं और पुराने कर्मों का फल भी जो है हम ठीक से नहीं भोगते हैं तो वे कर्म हमें बहुत अधिक तकलीफ दे के चले जाते हैं। कर्म तीन काम एक साथ करते हैं, एक तो उदय में आकर के अगर असाता उदय में आए तो हमें दुखी करके जाती है और इतने ही नहीं उस दुख के चलते हमें नए दुख के संस्कार निर्मित करती है और हमारे दुखी होने से आसपास का वातावरण भी दुखमय हो जाता है। इतनी सारी चीजें जो है एक एक कर्म का फल भोगते समय अगर हम थोड़ा सा विचार करें कम से कम दो चीजें तो विचार करें कि ये कर्म का उदय मेरे अपने परिणाम अगर खराब कर रहा है तो आगे के लिए भी मैं ऐसे खोटे संस्कार डाल रहा हूं, ये अपनी संतान छोड़ के जाता है कर्म अगर, तो फिर मुझे इस उदय से कोई मतलब नहीं। उदय को सहन करने की प्रक्रिया सीख लेता है वही व्यक्ति नए कर्मों से बच सकता है। बस आज अपन ने यह बात समझ ली, मेरे पूर्व में बांधे गए कर्मों का जब मुझे फल मिलने लगे तब मुझे उस फल को कैसे खाना है। ऐसा समझ लें जैसे कि हम बाजार से चने लेकर के आए हैं तो हमें कैसे खाना है, हमें चने देवर बना के खाना है या कि उसका जो है बेसन बना करके खाना है और बेसन भी जो है बेसन से भी हमें कौन सा आइटम बनाना है कि भुजिया बनाना है कि कड़ी बनाना है कि बूंदी बनाना और बूंदी भी रायते के साथ में खाना है कि मीठी करके खाना है, ये हमारे ऊपर निर्भर। और तो छोड़ो आप चने लाए हैं ये ठीक है हमारे हाथ में चने आए हैं लेकिन चने का क्या प्रोसेस करके मुझे उसे किस तरह से उसका टेस्ट लेना है ये मेरे ऊपर निर्भर करता। कर्म मैंने बांधे हैं मेरी अज्ञानता से बांधे हैं वे मुझे उदय में आ रहे हैं, मुझे उसके उदय के समय उसका फल लेते समय उदय के मायने क्या है फल, उसका फल मुझे किस तरह से लेना है ये मेरे ऊपर मेरे परिणामों पर निर्भर है। मेरे द्रव क्षेत्र काल को अगर मैं नहीं भी परिवर्तित कर पाऊं तो अपने परिणाम तो मैं संभाल सकता हूं। बस भैया इतनी ही बात सीखने की है, तीन बातें ध्यान में रखें। कर्मों को जीतने का पहला उपाय है कि हम बाहर के वातावरण से जितनी जल्दी हो सके सामंजस्य स्थापित करें, यह हो नहीं पाता है। बाह्य वातावरण हमारे अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार का होगा, हमारा फर्ज है कि हम उससे जितने जल्दी दो मिनट पांच मिनट दिन भर और कितना साल दो साल नहीं इतना लंबा नहीं सुबह की बात शाम तक साफ हो जाए तो बड़ा अच्छा है। सा जैसे बच्चों का चित्त रहता है कि पांच मिनट बाद अपन पांच मिनट बाद ना कर सके तो वही वातावरण जो हमारे प्रतिकूल है मान लो उससे भी हम अपने को एडजस्ट कर लें कि जब यही सिचुएशन हमें मिली है जब यही सारी चीजें तो उसमें मैं कैसे जीऊं शांति से जीऊं। मैं दिन भर संकलेश करके भी पूरा दिन निकाल सकता हूं जबकि मेरे प्रतिकूल है आज सारा कुछ वातावरण मेरे मान लो प्रतिकूल है और सारा दिन मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए, या तो मैं शांति से दिन निकाल दूं या कि रोते रोते निकाल दूं दूसरे को नाराज होते हुए पूरे सिस्टम पूरे फंक्शन को ही दोषी ठहरा करके मैं पूरा दिन निकालना चाहूं, और या फिर मैं शांति से निकालूं बाह्य वातावरण से मैं जितनी जल्दी एडजस्ट कर सकूं अपने मन को एडजस्ट कर लूं। पहली चीज है ये तो बहुत सामान्य सा अपन कर सकते कर भी लेते हैं कई मौकों पे कर लेते हैं कई मौकों पे हार जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये ध्यान रहे कि मैं जितनी जल्दी बाहर के वातावरण से एडजस्ट कर लूंगा उतने कम कर्म मुझे बंधेंगे। कर्मों के बंधन का उपाय रोकने का यही है। दूसरी चीज कि प्रतिक्रिया हम कुछ देर से करें, हम लोग बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करते किसी भी चीज की। आप देख लो अच्छा मां ने कहा हमारा जो काम कर दो हमें नहीं कर सकनी है एकदम मुंह पर जवाब रखा रहता हमारे पर रखा रहता था पहले और फिर बाद में हम धीरे से कहते थे हाँ बताओ क्या करने है। लेकिन हैबिट कैसी बन जाती है कि सबसे पहले किसी ने भी हमसे कहा हमारे प्रियजनों ने किसी ने भी कहा कि जे हमारा काम इतना थोड़ा कर दो फिर टाइम नहीं मैंने इतनी व्यस्तता उस समय क्यों हमारे मन में ये फट से प्रतिक्रिया होती है, हम क्यों नहीं विचार करते हैं। हम लोग बहुत जल्दी किसी भी बात पर प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त कर देते हैं, भली प्रतिक्रिया या बुरी प्रतिक्रिया, अगर हम उस प्रतिक्रिया को सोच समझ करके करें। एक महाराज जी हैं संघ में, उनका मैं हमेशा बहुत गौरव से नाम लेता हूं, अभय सागर जी महाराज। हमने उनको देखा, आप कितने उनसे बात करते रहो वे सब सुनते रहेंगे, पेशेंस लिसनर, बहुत शांति से सुनते रहेंगे। हम तक उनसे अगर 10 बातें कहेंगे, उन 10 में से एक भी अगर उनके जवाब देने लायक नहीं होगी तो वे चुप रहेंगे, जैसे उनने सुनी नहीं। और उन 10 के बाद हमने 11वीं कही तो उसका फौरन जवाब दे दिया, और 10 का कुछ नहीं जवाब दिया, क्योंकि उन्हें देने नहीं है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन अपन को तो कोई एक बात कहे तो अपन 2 बातों के जवाब देने तैयार है। ये जो एक प्रतिक्रिया है वो बहुत अपनी फास्ट है, ये थोड़ी सी अगर कंट्रोल में आ जाए। देखिए अपन विचार कर रहे हैं, किसी पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं कि लोग जल्दी प्रतिक्रिया क्यों कर देते हैं, कर देते हैं, ये हमारे नेचर में आ गई है चीज कि हम लोग कोई भी चीज कहीं भी देखते हैं, मैंने हर चीज के बारे में, ऐसा नहीं कि आपको कोई बात कहे तभी आप प्रतिक्रिया, नहीं, वातावरण को लेकर के ये क्यों ऐसा है और ये क्यों कैसा, मैंने हमेशा जो है हर एक चीज पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की प्रतिक्रिया। हाँ, पॉजिटिव भी प्रतिक्रिया होती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी प्रतिक्रिया बहुत सोच समझ करके करिएगा, सहसा मत करिएगा अगर आप कर्म बंध से बचना चाहते हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया बिना कषाय के नहीं होती, ध्यान रखना। और अगर कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता है, कम से कम प्रतिक्रिया करता है, तो उतनी कम कषाय कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। किसी भी लोभ से प्रेरित होके, माया से प्रेरित होके, मान से, क्रोध से प्रेरित होके हम बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं, बहुत जल्दी हम उसका प्रतिक्रिया मतलब बहुत जल्दी हम किसी भी चीज का जवाब दे देते हैं, हम उसका रिएक्शन कर देते हैं बहुत जल्दी, चाहे वो माने सोचने वाली प्रक्रिया हो, चाहे वो कहने सुनने वाली प्रक्रिया हो, या करने वाली प्रक्रिया हो, एक्शन वाली भी प्रक्रिया हो, इन पर क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरी चीज कि संसार में होने वाले घात प्रतिघात में अनावश्यक अपनी ऊर्जा हम नष्ट ना होने दें, अनावश्यक बहुत सारी, क्योंकि संसार में इतनी चीजें चलती रहती हैं, दुनिया भर में क्या क्या नहीं हो रहा सारे संसार में। अपन कहते ना अपना लोटा छानो, अपनी भाषा में, जो व्यक्ति जितना इस पर अमल करेगा वो व्यक्ति उतना कम कर्म बंध करेगा, और जिसको सारे संसार की चिंता है उसे ज्यादा कर्म बंध करने वाला कोई नहीं है। अब उनको अपनी तो ठीक ही है, उनको अपने परिवार की, समाज की, पूरे देश की, पूरे संसार भर की चिंता है, खाएं जाते हैं। अब उनको का मैंने ये समझ लो कि बीमार व्यक्ति पड़ा था और खिड़की में से देख रहा था बाहर, और उतने में जो है एक बैलगाड़ी निकली और उस बैलगाड़ी में रुई भरी थी, और फिर एक बैलगाड़ी निकली तो फिर उसमें रुई भरी थी, और फिर निकली तो फिर रुई भरी थी। अब ये पड़े पड़े और यही विचार में पड़े, इतनी रुई कौन धुनेगा, कौन धुनेगा, कौन धुनेगा, कौन धुनेगा, अब बताओ अब पहुंच में आ गया कि नहीं। अनावश्यक जो है संसार में होने वाली चीजों में हम और अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, किसका क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो उसकी वो जाने, जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है उसकी। लेकिन सारे संसार की जिम्मेदारी, जैसे हमको यहां पर भेजा गया है सारे संसार का हिसाब बनाने, ऐसा हम करने हैं। और देखो ऐसा है, अपन सब समझते तो है, ऐसा नहीं है, बस इतना ही है कि उसको समझ करके थोड़ी समझदारी से उनमें थोड़ी कमी लाएं, अपन अनावश्यक रूप से अपन संसार के बारे में चिंतित ना हो। जो व्यक्ति बहुत अधिक दूसरे को सुधारने की चेष्टा करता है और स्वयं तो नहीं सुधरता है, वो व्यक्ति संसार में भटकता ही रहता है। दूसरे को क्या करना चाहिए यह नहीं सोचना है, सोचना यह है कि मुझे क्या करना चाहिए, यह मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि मेरा जीवन थोड़ा सा है और मुझे अपने उस जीवन में क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, इदम कर्तव्यम इदम ना कर्तव्यम, इदम आचरणीयम इदम ना आचरणीयम। लेकिन दूसरे के लिए नहीं, दूसरे को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, दूसरे का आचरण ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां नहीं, वो उंगली वहां न जा करके इदम यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरा कर्तव्य नहीं है, ये मेरे करने योग्य है, ये मेरे करने योग्य नहीं है, अगर ऐसा हमारे अंदर विचार आ जावे तो भैया फिर भी थोड़ी सी कमी आ सकती है। अपन तो विचार ही कर रहे हैं, पर इन विचारों को जब तक अपन क्रियान्वित नहीं करेंगे, बहुत सारी चर्चा अपन ने करी, इनमें से जो भी आपको लगे कि हाँ ये पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकेबल है, तो उसको जरूर फॉलो करके देखिए। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कठिन है, वातावरण से सामंजस्य बनाना सीखें, बहुत आसान सा है, करना पड़ेगा। और जल्दी से प्रतिक्रिया ना करें, और सब लोगों को क्या करना चाहिए इसकी अपेक्षा, मुझे आज दिन भर में क्या कर लेना है, मेरा अपना शेड्यूल तय है, ये मैं अगर करूं तो देखिएगा लाइफ एकदम जो है व्यवस्थित होने में देर नहीं लगेगी। मुझे तो लगता है नहीं होगी पूरी तरह, नहीं होगी 100%, तो थोड़ी बहुत तो होगी, देखिएगा इसको करके। और इसी भावना के साथ कि हम सब लोग इन सब बातों को समझ के अपने जीवन को अच्छा बनाएं। आचार्य गुरुवर विद्यासागर।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है।
जग जग विश्राम है रचिपच कर नासिल निद्रा में सोता हूँ,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। तव शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन कर।